प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 26 अक्टूबर 2016 के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सभी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन पांच नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शालिनी सिंह, आप बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। अलका यादव, आप शिकोहाबाद से हैं। दीपक कुमार, आप फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। विवेकानंद कुमार, आप चेन्नई से हैं। और कृष्ण प्रताप सिंह, आप रामनगर विश्रामपुर से हैं। तो शालिनी, अलका, दीपक, विवेकानंद और कृष्ण प्रताप, आप सभी पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर और न्यूज एनालिसिस की हम शुरुआत करेंगे न्यूज एआईआर न्यूज से। दोस्तों आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी जब हम आकाशवाणी के समाचार सुनते हैं तो अगर जब हम ऊपरी तौर पर सुने तो ऐसा लगता है कि आज के समाचार में कुछ भी खास नहीं है ऊपरी तौर पर सुनने पर, लेकिन जब हम थोड़ी सी गहराई से अंदर की चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि नहीं, कोई तो इम्पोर्टेंट बात है जिसको सिविल सर्विस के लिहाज से थोड़ा ध्यान से देखा जाना चाहिए। तो सच पूछे तो कल के आईआर न्यूज में कुछ वैसी ही बातें हैं। तो इससे पहले कि मैं उस बात पर आऊं, मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो बहुत ही सामान्य रूप में ही न्यूज में आई हैं और सच पूछे तो वो सामान्य सी भी हैं लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। पहली बात तो यह है दोस्त फ्रेंड्स कि आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एक जजमेंट के तहत हिंदुत्व की परिभाषा दी थी कि यह हिंदुत्व क्या है। उसमें उसने कहा था कि ये वे ऑफ लाइफ है, ये एक जीवन शैली है, जीवन जीने की प्रणाली है। वह बात अब फिर से उठाई जा रही है, खासकर कि ये जो हिंदू है ये धर्म है कि नहीं है, ताकि चुनाव में जब लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं जो एक तरीके से नहीं किया जा सकता, उसके आधार पर ये बहस चली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत साफ तौर पर कह दिया कि 1995 के अपने डिसीजन पर वो फिर से विचार करने नहीं जा रही है, इस पर वो कोई सुनवाई नहीं करेगी, मतलब बात खत्म हो गई। अब हो सकता है कि ये जो शब्द है ये अब एक पब्लिक डिबेट में आए और लोग इस पर बहस करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अब अपने को बिल्कुल किनारे कर लिया है, तो हो सकता है ये बहस में आए। बस मैं आपको यहां केवल ये बताना चाहूंगा कि अगर ये बात बहस के केंद्र में आ जाती है तब ये मान करके चलिए कि ये जो हिंदुत्व जो शब्द है ये आपके निबंध के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, और यदि यह मामला यहीं खत्म हो जाता है तो फिर उतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आपको कोई चांस नहीं लेना चाहिए, तो इस बात पर थोड़ा बहुत तो विचार कर ही लेना चाहिए कि अगर हिंदुत्व तो जीवन शैली है, एक वे ऑफ लाइफ है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप इस अगर मैं कहूं कि इसकी व्याख्या कीजिए तो व्याख्या करने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। दूसरी जो खबर थी मित्रों, कल न्यूज में भी आपने न्यूज चैनल्स पर भी ये बात आ रही थी कि क्वेटा जो बलूचिस्तान का एक शहर है, राजस्थान राजधानी है, वहां एक हमला हुआ है जिसमें लगभग 60 कैडेट मारे गए हैं और आईएस ने उसकी जिम्मेदारी ली है। ये एक आतंकवादी हमले का एक बड़ा विचित्र किस्म का फिर से एक रूप दिखाई दे रहा है जिसका शिकार अब खुद पाकिस्तान हो रहा है। ये केवल इस मायने में थोड़ी सी महत्वपूर्ण घटना है कि अब पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देगा। देखिए कैडेट का मारा जाना, मतलब जो बिल्कुल यंग लड़के हैं उन लोगों की हत्या हुई है और आतंकवादी संगठन ही उसमें शामिल हैं, तो अब इसका पाकिस्तान किस तरीके से जवाब दे पाएगा कि उसके यहां आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, संगठनों को शह मिल रही है, नहीं मिल रही है, देखिए कि आगे किस तरीके से बात बढ़ती है। लेकिन परसों के अखबार में, कल के अखबार में भी कुछ एडिटोरियल्स इस तरह के थे, न्यूज भी छपी थी कि जब अमेरिका ने परसों एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि पाकिस्तान या तो अपने यहां की जो आतंकवादी गतिविधियां उनको कंट्रोल करें, नहीं तो फिर हमको घुस करके कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी एक वार्निंग थी, मतलब कि हमें नहीं तो फिर उन मामलों को ठीक करना पड़ेगा, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे, हाँ, अगर पाकिस्तान हमसे इस बारे में कोई मदद चाहता है तो हम उसकी मदद करने को तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, और मुझे लगता है कि भारत ने खासकर अब पाकिस्तान के बारे में जो एक हार्ड स्टेप उठाया है, एक कदम उठाया है, और उसे अलग थलग करने की जो नीति अपने आप में ये कह लीजिए कि स्वीकार की है, उसी के परिणाम में ये अभी ये चीज हमें दिखाई दे रही है। मित्रों, अब मैं आता हूं ऑल इंडिया रेडियो की उस सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज पर, जिसके बारे में मैंने कहा कि ऊपरी तौर पर देखने से तो उसमें कुछ खास दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर देखने से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें सिविल सर्विस के लिए मिलता है, और वह है जनजातियों का सशक्तिकरण। आपने न्यूज में सुना कि पहली ही खबर थी कि प्रधानमंत्री जी ने जनजातियों के सशक्तिकरण पर जोर दिया है, ये खबर थी। कल भी मैं आपको बता चुका हूं और आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो हमारी सोसाइटी के का जो दुर्बल वर्ग है, वो वर्ग अलग से आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और जनजातीय वर्ग भी उसमें आता है। न्यूज में आपने कुछ चीजें सुनी होंगी, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, फिर से मैं उधर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और ये ध्यान मैं इसलिए भी दिला रहा हूं मित्रों ताकि आप में वो दृष्टि पैदा हो सके कि न्यूज से आप अपने लिए चीजें पकड़ सके और उन चीजों को पकड़ सके जो व्यूज में कन्वर्ट होती हैं, जहां से आप चीजें उठाकर अपने प्रिपरेशन को एक अलग डायमेंशन दे सकते हैं, एक अलग मोड़ दे सकते हैं, और सच पूछे तो वही मोड़ सिविल सर्विस की मंजिल तक पहुंचाने वाले सही रास्ते पर आपको लाकर खड़ा भी करेगी। उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक योजना का उल्लेख किया था, न्यूज में वो बात थी, उसे आपने अगर ध्यान दिया तो वन बंधु कल्याण योजना, ये बात उन्होंने कही थी कि हमने शुरू की है और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, ये सारी बातें उन्होंने कही। इसके बाद उन्होंने कुछ अलग तरह की बातें कही, खासकर जो हमारा जनजातीय समुदाय रहा है उनकी क्षमताओं के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में उन्होंने बात कही कि इनमें अपनी मुश्किलों से लड़ने की बहुत ही जबरदस्त क्षमता होती है, जो बात बिल्कुल सही है क्योंकि इनका तो जीवन ही पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित होता है। बरसात, गर्मी, ठंड सब बर्दाश्त कर रहे हैं, शारीरिक रूप से बहुत सक्षम होते हैं, तो निश्चित रूप से इनमें संघर्ष करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और हम सब यू सोचिए, समझ लीजिए कि शहरों में रहने के बाद थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाती है और तंत्र को कोसने लगते हैं, वहां वो कभी अपेक्षा ही नहीं करते कि बिजली जैसी कि उन चीज किसी चीज की उन्हें जरूरत भी है, वो प्रकृति पर आधारित रहते हैं। और फिर उन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि जो हमारे जनजातीय समुदाय के लोग हैं, ये तो मूलतः वनों की रक्षा करते हैं। मित्रों, यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। न्यूज की बात तो लगभग इतनी ही थी कि खासकर अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काफी बदलाव आया, मतलब अंग्रेजों के आने के बाद जो वन भूमि थी उस पर आप यूं मान करके चलिए कि सीधे स्टेट का कब्जा हुआ, यानी कि राज्य का अधिकार आया। अदरवाइज उससे पहले जो वन भूमि थी, जो जंगल थे, वो एक तरीके से आदिवासियों के ही हवाले थे, जनजातियों के ही हाथ में थे, वहीं वो रहते थे, जीवन यापन करते थे, वही उनका इकोनॉमिक रिसोर्स भी था, कंद मूल फल फूल खाना, वहीं रहना, शिकार करना, तो उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानियां नहीं होती थी। अंग्रेजों ने पहली बार एक्ट बना करके वो सारे अधिकार अपने हाथ में लिए और धीरे धीरे जनजातियों को वहां से बेदखल करना शुरू किया, और सच पूछे तो वहीं से जनजातियों का जो समूह है उनके सामने एक जीवन का संकट पैदा हुआ, और उसी के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आप देखेंगे कि उनके कुछ विद्रोह भी दिखाई देते हैं, कुछ विद्रोह भी हुए। अब मैं इसी बात को आधार बना करके आपको जो थोड़ी सी बातें जो बताने जा रहा हूं वह स्पेशली वन बंधु कल्याण योजना के बारे में है कि ये कल्याण योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। थोड़े से जानने के बाद आपको मुझे लगता है कि वो क्षमता महसूस होने लगेगी कि आप इस पर पूछे गए प्रश्नों के जवाब कुछ दे सकें। और वैसे भी यदि आपको अपनी बात को तथ्यात्मक तरीके से लिखना है तो जनजातियों पर या उनके विकास पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें इसका उल्लेख होना ही चाहिए। दोस्तों, ये जो वन बंधु कल्याण योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये जुलाई 2014 में हुई थी, और आपको मालूम है कि मई में ही अभी नई सरकार 2014 में मई में ये नई सरकार आई थी, यानी कि आने के 2 महीने बाद ही आप ये कह लीजिए कि वन बंधु कल्याण योजना शुरू कर दी गई थी। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जो जनजातियों के मामले को देखने के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया। और आपने न्यूज में इसका आपने उल्लेख भी सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली इसका उल्लेख भी किया। वह इस योजना को लागू करती है, और इस योजना का जो उद्देश्य है, अगर हम लमसम में कहना चाहें कंप्लीट वर्ड में, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फॉर ट्राइबल्स, कि ये जो हमारी जनजातियां हैं इनका सर्वांगीण विकास और कल्याण, यह इस वन बंधु कल्याण योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके लिए देखिए कि किस तरह का मैकेनिज्म बनाया गया है, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उधर ले जाना चाहूंगा। इसमें हमारे देश के 10 राज्य फिलहाल चुने गए हैं, वे राज्य जहां जनजातियों की संख्या काफी है, कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, नो डाउट कि तेलंगाना भी है अब अलग हो जाने के बाद, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये कुछ स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स जहां ये वन बंधु कल्याण योजना लागू की गई है। दोस्तों, ये जो वन बंधु कल्याण योजना जो लागू की गई है, ये किस तरीके से क्या किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं, आप कह सकते हैं 10 करोड़ रुपए एक स्टेट को, और स्टेट अपनी तरफ से इसमें और धन लगा करके योजनाओं को लागू करेंगे। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वन बंधु कल्याण योजना के तहत क्या क्या होना है। तो सबसे पहले तो आपको सेटअप तैयार करना पड़ेगा ताकि आप इन योजनाओं को लागू कर सकें। तो उस सेटअप के अंतर्गत वो क्या क्या चाह रहे हैं, क्या क्या करने जा रही है सरकार, उसको थोड़ा सा आप सुन लीजिए। कि पहली बात तो यह कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए जाएं जो कल्याण से संबंधित जो योजनाएं होती हैं उन्हें लागू कर सकें। तो इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं बनाई जाए, चाहे वो एनजीओ के फॉर्मेट में हो, सरकारी तंत्र के रूप में हो, ट्रस्ट के रूप में हो, चाहे वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हो, जो भी हो, लेकिन इंस्टीट्यूट बनाए जाएं। और दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे इस योजना में लगती है वो है कन्वर्जेंस की, यानी कि ठीक है इंस्टीट्यूट तो बना दिया जाए और फिर उस इंस्टीट्यूट को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि इनके कल्याण से संबंधित जितनी भी अलग अलग योजनाएं हैं और अलग अलग लोगों द्वारा लागू की जा रही हैं उन सबको एक जगह पर ले आया जाए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग योजनाएं करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग योजनाएं कर रही हैं, जैसे मैंने कहा कुछ एनजीओज अलग तरीके से हैं, ट्रस्ट अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये जितने भी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं और फिर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, 3 चीजें ही होंगी, एक तो योजनाएं चल रही होंगी, फिर उन योजनाओं के लिए रिसोर्सेज होंगे और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्टिविटीज हो रही होंगी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है इन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया जाए ताकि एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लागू किया जा सके, उसके फिर परिणाम दिखेंगे। तीसरी बात फिर आई कि इसकी जो योजना बनाई जाए कि अब वहां का डेवलपमेंट कैसे हो, तो उस प्लानिंग के जो अधिकार हैं वो पंचायती राज्यों को दिए जाएं, वो हैं भी, और पंचायती राज्यों के माध्यम से ही वहां की योजना तैयार किया जाए, यानी कि जो वहां लोकल लोग हैं वही उसकी योजना बनाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वो उसको मॉनिटर भी करेंगे, यानी कि ये सारी शक्तियां जनजातियों के हाथ में ही दे दी जाए, उसके सोशल ऑडिटिंग करें, उसका सुपरविजन करें, उससे वो फायदा भी उठाएं। ये 4 पॉइंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण रखे गए हैं इस कल्याणकारी योजना में। दोस्तों, फिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, किन किन क्षेत्रों को चुना गया है, कैसे उनके कल्याण को डिफाइन किया गया है, कौन कौन से काम उसके तहत किए जाने हैं, किस किस तरह की एक्टिविटीज की जानी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि नो डाउट कि चूंकि जनजाति वर्ग जंगलों में रहता है, दूर दराज के पिछड़े इलाकों में रहता है, प्रकृति के बीच रहता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मतलब उनका डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए कि प्रकृति से सामंजस्य बैठाकर वो लंबे समय तक चल सके, यानी कि प्रकृति के विनाश की कीमत पर उनका डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नो डाउट, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनके एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ हेल्थ, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती हेल्थ होती है क्योंकि जंगलों में रहते हैं, अच्छा साफ पानी पीने को नहीं मिलता, भोजन भी उस तरह से शुद्ध नहीं मिल पाता। हाँ, ऑक्सीजन हम सब की तुलना में वो कई गुना ज्यादा शुद्ध लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका हेल्थ डिटोरिएशन बहुत जल्दी होता है, तो उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। नो डाउट कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर को एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया कि कम से कम पीने का उन्हें साफ पानी दिया जाए। जो गांव के लोग, जो जनजाति क्षेत्र होते, जाकर के देखे तालाब का पानी पी रहे हैं, कुएं का गंदा पानी है उसको पी रहे हैं, नदी का पानी पी रहे हैं, नदी का बहता हुआ पानी तो फिर भी थोड़ा सा ठीक ही होता है, यहां तक कि रुके हुए पानी तक को वो पीते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीमारी की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। उन्हें रोड कनेक्टिविटी दी जाए, यानी कि शहर कस्बे आसपास के जो नगर हैं उनसे उन क्षेत्रों का जुड़ाव हो जाए। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो भूमि, जहां भूमि है खेती की जा सकती है, जहां जो भी ऐसी भूमि है वहां इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, उनको किसी तरीके से बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उन तक बिजली पहुंचाई जाए। और सरकार ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह की है कि उन्हें स्पोर्ट्स में दक्ष किया जाए। आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश जो रियो ओलंपिक में या किसी भी ओलंपिक में इतने सारे जो मेडल लेकर के आते हैं, उसमें ज्यादातर योगदान उन ब्लैक्स का होता है, तो क्योंकि शारीरिक रूप से बहुत सक्षम होते हैं। बहुत से स्पोर्ट्स तो ऐसे हैं जो हम सीखेंगे और वो जन्मजाति उसको सीख करके और उनके जीवन यापन के हिस्से बन चुके होते हैं। तीरंदाजी है, भारोत्तोलन है, दौड़ है, मैराथन जैसी चीजें हैं, वो तो लगातार यही करते रहते हैं, उनके रोज का काम है, तो स्पोर्ट्स भी उनको इन स्पोर्ट्स में दक्ष किया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट उनका किया जा सकता है। और फिर इसके साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया गया है कि जो उनका जो अपना कल्चर है, उनकी जो अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी जो भाषा है और उनकी अपनी जो विरासत है, उसकी भी रक्षा का ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये वन बंधु कल्याण योजना के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी है, क्योंकि मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा, तो मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में ले लें और उस पर एक थोड़ी सी और अच्छी तैयारी कर लें। मैं आपको थोड़ा सा एक और भी बैकग्राउंड बता दूं कि शायद 2006 के आसपास, 4 या 6 के आसपास एक फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था, वन अधिकार अधिनियम, जो वन में रहने वाले जनजातियों के बहुत ही ज्यादा पक्ष में था, और उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कुछ वो जनजातियां जो एक पर्टिकुलर समय तक जिस क्षेत्र में रह रही हैं, वह उस भूमि पर उनको ही उनका अधिकार दिया जाएगा, उनको उसके पट्टे दे दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव एक्ट था जो कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में आया था। तो मित्रों, AIR न्यूज से इतना ही, और मुझे लगता है कि आज बहुत से स्टूडेंट इस बात को जानकर खुश होंगे कि मैं आज न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स उन्हें ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ी सी क्लिपिंग्स हैं, और आज कुछ सहयोग ऐसा हुआ है कि ज्यादातर क्लिपिंग्स इंग्लिश की हैं। एक हिंदुस्तान में हिंदी की क्लिपिंग, एडिटोरियल कमेंट है हिंदुस्तान का, और वो खासकर आपके सिविल सर्विस में जो एज को लेकर के बात हो रही है कि घटाई जाएगी, तो अभी सरकार ने इस क्लियर किया है कि 2017 का जो एग्जाम है वो अभी पुराने पैटर्न, पुरानी ही एज लिमिट पर होगा, तो आप सबको निश्चिंत होना हो जाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल कमेंट है, बाकी कुछ दूसरे आर्टिकल्स हैं वो आप लोग देख लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, हमारे जो फिफ्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनसे बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। नो डाउट कि आप सबकी ये प्रतिक्रियाएं कहीं न कहीं हम लोगों को इस बात को सोचने के लिए बाध्य करती हैं कि हम चीजों को और कैसे बेहतर बनाएं, और इनफैक्ट सच पूछे तो और ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं। तो इस तरह के मेल भेजने वालों में कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, सैयद अनवर खान जो फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं, योगेश सताव जो भोपाल से हैं, नवीन कुमार जो मोतिहारी बिहार से हैं, और राकेश तेली गुजरात से हैं। आप सब का जो भाव है वो मित्रों उसी तरह का भाव है कि 15 दिन की क्लास अटेंड करने के बाद अब NCERT की किताबें पढ़ने में ज्यादा समझ में आ रही हैं, सब्जेक्ट से बोरियत खत्म हो गई है, यहां तक कि स्टूडेंट्स इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि अब जब वो डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो उनके समझने का स्तर न केवल व्यापक हो गया है बल्कि गहरा भी हो गया है, बिटवीन द लाइन्स वाली चीज भी अब क्लियर हो रही है, एनालिसिस पावर बढ़ रही है। तो इस तरह के कमेंट्स आप सभी ने किए हैं अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुभव के आधार पर, तो मैं आप सबको इस फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और फिर से एक बार सतर्क करता हूं कि प्लीज जो भी परिवर्तन आप सब महसूस कर रहे हैं उसे एज ए ग्रांटेड बिल्कुल न लें, उसे लगातार तब तक पकड़े रखें जब तक कि वह आपके व्यक्तित्व का अंतर्निहित अंग न बन जाए। तो मित्रों इसके बाद मैं कुछ और दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा, वो है गजानंद भोंडे जो अमरावती महाराष्ट्र से हैं, रजत बोलपुर से हैं, काजल भारती पटना से हैं, जिग्नेश सूरत गुजरात से हैं, निहारिका चौधरी यश सैनी दौसा राजस्थान से हैं, देवेश गौतम कोलकाता से हैं, सौरभ वर्मा लखनऊ से हैं, शाहबाज हुसैन कल्पना विश्वकर्मा और संजय कुमार रावत, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।